भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल बलराम जयंती की शुभ अवसर महोत्सव को मनाने के पश्चात बलराम जी की कथा समाप्त न करने की इच्छा रख के बलराम जयंती का महोत्सव तीन दिन दो दिन बढ़ाया जा रहा है, जहां बलराम जी की कथा जारी रहे। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बलराम जी का आविर्भाव किस तरह हुआ और बलराम जी जब प्रकट हुए नंद गोकुल में तो अपने बाल लीला कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने कैसे प्रकट किए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि माता देवकी को छह पुत्र पहले हुए जिनकी हत्या हुई, फिर बलराम जी आए और फिर कृष्ण। ये ऐसा क्यों हुआ कि छह पुत्र उनकी आंखों के सामने मारे गए और फिर बलराम जी कृष्ण के पहले वहां क्यों आए। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि बलराम और कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तो वो ऐसे छह बच्चों ने जो गर्भ में रहे थे, ऐसे गर्भ में उन्हें क्यों जन्म लेना पड़ा। वास्तव में ये जो देवकी के पहले छह पुत्र थे वो मरीचि के पुत्र थे, छह पुत्र। ब्रह्मश्राप की वजह से उन्हें हिरण्यकश्यप के पोते के रूप में असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। कालनेमी के पुत्र थे और आप तो जानते हैं कि कालनेमी फिर आगे चल के अगले जन्म में कंस बने, और यही छह मरीच के पुत्र जो कि बाद में कालनेमी के पुत्र बने, वो अगले जन्म में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। और जब कंस ने उनका वध कर दिया, उनको उनकी हत्या कर दी, तो फिर वो अपने स्थान में लौट कर चले गए। तो ये प्रश्न आता है कि ये तो षडगर्भ, ये छह बच्चे या षडगर्भासुर जो असुर थे कालनेमी के पुत्र, वो जिस गर्भ से उत्पन्न हुए उसी गर्भ में भगवान बलराम और कृष्ण कैसे आए? तो क्या इसका मतलब है बलराम और कृष्ण और षडगर्भासुर एक समान है? वास्तव में ये भी भगवान की ही योजना थी कि कंस ने जिन पुत्रों की हत्या की, जिन बालकों की हत्या की पिछले जन्म में, वो उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं के पुत्रों की हत्या करनी पड़ी। देखिए, ये है खेल किस्मत का, या कहिए कर्मों का। सकाम कर्म जब हम करते हैं संसार में, पाप पुण्य के चक्कर में लग जाते हैं, तो ऐसे ऐसे विचित्र घटनाएं घटती हैं कि पिछले जन्म के शत्रु अभी प्रेमी बन जाते हैं, एक परिवार में आ जाते हैं, फिर झगड़े करने लगते हैं। पिछले जन्म के जो शत्रुता का बदला इस जन्म में निकट के होकर लेते हैं। तो ऐसे विचित्र घटनाएं घटती हैं ये संसार में। संसार यम अतीव विचित्र है, इसलिए बताया जाता है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये सब बदलते रहते हैं। मित्र शत्रु के रूप में आते हैं, शत्रु मित्र के रूप में आते हैं। कौन किसकी हत्या करता है, उनका पिछले जन्म में क्या संबंध था, ये सारे बड़ी विचित्र बातें हैं। इसलिए संसार एक अद्भुत जगह है। इस संसार में न रहते हुए हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उनके संग में हमेशा के लिए चले जाएं। तो खैर, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी हैं गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर इत्यादि, तो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है बहुत सुंदर ढंग से। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस प्रश्न का जवाब दिया है भगवद गीता में। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्चमे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। नौवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ये ब्रह्मांड भर में सर्वव्यापी हूं और सब प्राणी मुझमें हैं, मुझमें स्थित है। और आगे चल के बताते हैं, हालांकि मैं सब जगह हूं, वो मुझमें है, लेकिन फिर भी सब प्राणी मुझमें नहीं है, ये मेरा दिव्य ऐश्वर्य है। सब मुझमें है भी और नहीं भी, मैं संसार में हूं भी और नहीं भी, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। भगवान इस संसार में आते हैं लेकिन संसार का स्पर्श नहीं करते, अर्थात संसार के तीन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। तीन गुण हमेशा उनके अधीन रहते हैं, लेकिन भगवान तीन गुणों के अधीन कभी नहीं रह सकते। तो जिस प्रकार से भगवान इस संसार में आते हैं और आते हुए भी तीन गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं, हमेशा गुणातीत रहते हैं, उसी तरह से जब वो देवकी के गर्भ में आए बलराम के रूप में, या तो स्वयं कृष्ण भगवान जब आए, तो वो गर्भ से हमेशा परे ही रहे। भगवान को जन्म लेना होता है तो किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है, हमें जन्म लेना होता है तो गर्भ की आवश्यकता होती है, गर्भ के बिना हम जन्म नहीं ले सकते। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम इत्यादि गर्भ को निमित्त बनाकर आते हैं, क्योंकि वो मनुष्य समाज में जन्म ले रहे हैं, इसलिए मनुष्य ये जन्म लेने की पद्धति को वो स्वीकारते हैं। हालांकि इस ऐसे स्वीकारने के लिए उनको कोई बंधन नहीं है। तो भगवान बलराम और कृष्ण भी जब देवकी के गर्भ से आए तो ऐसा नहीं कि जैसे षडगर्भासुर आए। जिस प्रकार से जब भगवान कृष्ण और बलराम भौतिक संसार में आते हैं तो हम जैसे नहीं आते, उसी प्रकार से जब वो देवकी के गर्भ में गए तो षडगर्भासुर की तरह नहीं गए, अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखा उन्होंने। जब शुद्ध भक्त भी इस संसार में रहते हुए गुणातीत रहता है तो भगवान कैसे नहीं रह सकते। शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान करके गुणातीत हो जाते हैं तो भगवान कैसे नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, आगे एक सुंदर उपमा देते हैं, दृष्टांत देते हैं और बताते हैं कि मरीच ये मन के समान है। जो छह अनर्थ हमारे हृदय में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह अनर्थ जो हैं मरीच के छह पुत्रों के बराबर हैं। क्योंकि मरीची से छह पुत्र हुए थे तो मरीची के छह पुत्र, और ये अनर्थ जो है मन से उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और देवकी जो है वो शुद्ध भक्ति के प्रतीक है, अर्थात देवकी की तुलना शुद्ध भक्ति से की गई है और कंस की तुलना की गई है दुस्संग या कुसंग का भय। तो बताया जाता है कि भक्त को अगर ये संसार में भक्ति में प्रगति करनी है तो कुसंग से, दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, भौतिक संसार के कलमश से, भौतिक संसार के दुसंग से भयभीत रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऐसे भीति से उसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो भक्ति हृदय से प्रकट हो जाती है। जब भक्ति हृदय में आ जाती है तो कृष्ण वहां प्रकट होते हैं, क्योंकि जहां भक्ति है वहां कृष्ण प्रकट होते हैं, भक्ति के अलावा कृष्ण प्रकट नहीं होते। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश चाश्वे तत्वतः, कि जिस व्यक्ति के पास भक्ति है वही मुझे जान सकता है, मैं वही प्रकट हो जाता हूं। तो इस प्रकार से तुलना देखिए कितनी सुंदर है। मरीच जो ये षडगर्भों के पिता थे पहले पिछले जन्म में, वो मन के समान, षडगर्भ छह अनर्थों के समान, देवकी शुद्ध भक्त के समान, भक्ति के समान, कंस कुसंग के भय के समान। और जब देवकी भयभीत होती जा रही थी कंस से, इसका मतलब कि जब भक्त कुसंग से डरते रहता है तो उस समय हृदय में अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, भक्ति आ जाती है। तो देवकी जब घबरा रही थी कंस से तो उस समय उनके अनर्थ नष्ट हो गए, भक्ति ने अनर्थ नष्ट कर दिए। और जब भक्ति उत्पन्न हो गई हृदय में तो उस समय भक्ति के गर्भ में कृष्ण भगवान आ गए। तो इस प्रकार से सुंदर उपमा दी उन्होंने। अभी हमारे हृदय को कौन तैयार करते हैं, हृदय को शुद्ध कौन बनाते हैं? वैष्णव बनाते हैं, विशेष करके गुरु महाराज बनाते हैं। तो गुरु के आदेश, गुरु के कृपा से, उनके आदेश का पालन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भक्ति आती है, जब भक्ति आती है तो कृष्ण आते हैं। तो संकर्षण बलराम ये आदि गुरु हैं। गुरु जो होते हैं वो संकर्षण बलराम के प्रतिनिधि होते हैं। जो भी बल, आध्यात्मिक बल, वो बलराम से आता है, गुरु के माध्यम से होकर फिर हमारे हृदय तक पहुंचता है। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में कृष्ण के पहले क्यों आए? क्योंकि उनको हृदय को शुद्ध करना था। षडगर्भासुर आए हुए थे अनर्थ, अनर्थों से उनको मुक्त करना सीधे धीरे धीरे से जा रहे थे। जैसे जैसे देवकी कंस से घबराती जा रही थी, वैसे वैसे हृदय में अनर्थ दूर होते जा रहे थे और सारे अनर्थ नष्ट होने लगे। तो कृष्ण भगवान के आगमन के लिए तैयारी करने के लिए वहां आदि गुरु बलराम जी आए संकर्षण के रूप में और उनको हृदय तैयार किया। जैसे गुरु या वैष्णव हमारे हृदय को तैयार करते हैं भगवान के आगमन के लिए, भगवान के प्राकट्य के लिए हमारे हृदय में, उसी प्रकार से भक्ति रूपी देवकी के गर्भ में संकर्षण आए कृष्ण भगवान के प्राकट्य या आगमन के लिए तैयारी करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर उपमा है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जहां भी कृष्ण जाते हैं तो पहले बलराम तैयारी करने जाते हैं। बलराम जी कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, हर तरह से कृष्ण की लीला में वो सहायता करते हैं, कृष्ण की लीला को बनाने के लिए वो सारे योजनाएं बनाते हैं, सारे जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो करते हैं, व्यवस्था सारे कृष्ण की लीला के लिए बलराम जी ही करते हैं। सारा गोलोक धाम बलराम जी के दिव्य शरीर का विस्तारित रूप है। इसके बारे में और शाम को या कल चर्चा करेंगे, लेकिन कहना इतना आवश्यक है कि ये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है कि क्यों बलराम जी षडगर्भासुर के बाद में आए और कृष्ण के पहले आए और किस प्रकार से षडगर्भासुर ने देवकी के गर्भ में जन्म लेने के बाद भी देवकी का जन्म गर्भ जो है शुद्ध ही रहा। इसलिए कृष्ण बलराम एक ओर और षडगर्भासुर दूसरी ओर, इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भी कुसंग से भयभीत रहना चाहिए, वैसे हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। हमें गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए ताकि हृदय शुद्ध हो जाए और भक्ति उत्पन्न हो जाए। जहां भक्ति है फिर वहां कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे हमारे हृदय में। इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर को क्या बताते हैं, भवत पिता भगवतस तीर्थभूत स्वयं विभो, कि आप जैसे भक्त जो है वो साक्षात तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि स्व अंतस्थेन गदाभ्यत तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, कि आपके हृदय में ही भगवान प्रकट हुए हैं और इसलिए आप तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान बनाते हैं। वास्तव में तीर्थ स्थान का महत्व है जब वहां के साधु वगैरह होते हैं, वो तीर्थ स्थान को वास्तव में तीर्थ स्थान बनाते हैं। तो स्व अंतस्थेन अपने अंतःकरण में भगवान उपस्थित हैं, प्रकट हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा उनका स्मरण करते हैं। वैसे तो भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, लेकिन विशेषतः शुद्ध भक्त के हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा है, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं और सारे जो भी गुरु परंपरा है, गुरु तत्व है, वो बलराम से आती है। गुरु तत्व ये एक अलग तत्व है, जैसे विष्णु तत्व है, जीव तत्व है। विष्णु तत्व मतलब कौन? विष्णु तत्व मतलब कृष्ण से उत्पन्न होने वाले जो भी अवतार हैं, बलराम जी हैं, विष्णु हैं, नारायण हैं, नरसिंहदेव हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये सारे अलग अलग अवतार जिनको विष्णु तत्व कहते हैं, और जीव है ना जीव तत्व कहते हैं, और फिर शिव तत्व है, और फिर शक्ति तत्व है। शक्ति तत्व मतलब राधा रानी और उनके विस्तारित रूप। इस प्रकार से अलग अलग तत्व हुए, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, और एक अलग श्रेणी हुई और वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व मतलब ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये बलराम जी ही है, बलराम जी की ही शक्ति है ये। बलराम जी अपनी शक्ति अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट कराते हैं और जब ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं किसी व्यक्ति में तो उनको गुरु कहलाए, उनको गुरु कहते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो बलराम जी की शक्ति को प्रकट करते हैं, उसी बल को, उसी मार्गदर्शन करने की शक्ति को प्रकट करते हैं गुरु। और गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। गुरु दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं, चैत्य गुरु हो सकते हैं, ये अलग अलग गुरु हैं, लेकिन है एक ही गुरु। वर्तमान प्रदर्शक गुरु मतलब जो हमें पथ दिखलाते हैं कृष्ण भावना में आगे जाने के लिए, शिक्षा गुरु मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा गुरु मतलब जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, और चैत्य गुरु मतलब जो हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा रूपी भगवान है वो है चैत्य गुरु, क्योंकि वो हमेशा चित्त के अंतःकरण में रहते हुए हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो ये चारों हृदय, ये गुरु जो है, ये बलराम के ही स्वरूप होते हैं, बलराम की शक्ति ही वो प्रकट करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा से जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, ये बलराम की शक्ति है। तो देखिए बलराम का महत्व हमारे जीवन में कितना ज्यादा है। तो बलराम की शक्ति केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, ये संसार को चलाने वाली शक्ति भी बलराम जी की ही है। अनंत शेष के रूप में उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों के ऊपर धारण कर रखा है। अनंत शेष इतने विशाल हैं कि अनंत हरेक ब्रह्मांड जो है उनके फणों के ऊपर एक रुई के बीज के समान है। तो देखिए अनंत शेष कितने विशाल होंगे, हमारा एक ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, और एक ब्रह्मांड जो है वो अनंत शेष के लिए एक रुई के दाने के बराबर है। तो ऐसे अनंत शेष अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण किए हुए हैं, और इसलिए अनंत शेष जो है सारे भौतिक सृष्टि के आधार हैं। और इतना ही नहीं, हर एक ब्रह्मांड के भीतर भी बलराम जी अनंत शेष के रूप में, संकर्षण के रूप में, वो सारे ग्रहों को, तारों को, नक्षत्रों को भी आधार देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, 15वें अध्याय में बताते हैं, गाम आविश्य च भूतानि, मैं गाम अर्थात ये सारे ग्रहों में मैं प्रवेश करता हूं, धारयामि अहम ओजसा, और उनको धारण करता हूं मैं, सारे जो ग्रह हैं, लोक हैं, उनको ओजसा मतलब मेरी ओजस शक्ति से मैं इनको धारण करता हूं। देखिए ये प्रश्न आता है कि ये सारे ग्रह जो है, जो ब्रह्मांड में है, हवा में, आकाश में, अभी इधर उधर घूम रहे हैं अपने संवत्सर में, अपने अपने चक्र में सब घूम रहे हैं, सूरज, चंद्र और ग्रह, अलग अलग ग्रह, पृथ्वी भी, तो ये कैसे घूम रहे हैं? अपने आप घूम रहे हैं? वैज्ञानिक इसको ग्रेविटी कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उनकी अलग एक धारणा है, लेकिन ये ग्रेविटी शक्ति जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कहां से आती है इस बात को वैज्ञानिक नहीं जानते। ये शक्ति जिससे सारे ब्रह्मांड अपने अपने जगह में है, जिससे सारे ग्रह अपने जगह में है, वो बलराम से आती है, बलराम जी से। चलो कृष्ण भगवान कहते हैं कि गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, कि मैं सारे ग्रहों में प्रवेश करके सब ग्रहों को मैं धारण करता हूं, तो वो अपने आप अपने आप नहीं करते, वो बलराम जी के माध्यम से करते हैं। और बलराम जी भी खुद नहीं करते, वो अपने विस्तारित रूप अनंत शेष के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं, मतलब वो अनंत शेष के रूप में करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने सारे ग्रहों को धारण किया हुआ है। प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं, अगर आप बालू या रेती अपने मुट्ठी में पकड़ लें तो क्या रेती के कण जो हैं अलग हो जाएंगे? जब तक आपके मुट्ठी में हैं वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मुट्ठी में जो आपके बालू के कण हैं उनको ऊपर फेंकिए, हवा में छोड़ दीजिए, क्या होगा? उनको सारे कण जो हैं वो इतर तितर हो जाएंगे, कोई एक साथ मुट्ठी में आपके नहीं रहेगा, सब गिर जाएंगे जमीन के ऊपर। जब तक आपके मुट्ठी में है सब ठीक ठाक रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से संकर्षण के मुट्ठी में समझ लीजिए सारे ग्रह हैं। और इसलिए बलराम या संकर्षण की शक्ति से सारे ग्रह जो कि रेती के कण के बराबर है अपने अपने जगह में ठहरे हुए हैं। अगर बलराम जी की शक्ति नहीं होती, भगवान की मुट्ठी नहीं होती अगर, तो फिर क्या हो जाता? सारे ग्रह इधर उधर गिर पड़ते। अभी सारे ग्रह जो है अपने अपने चक्र में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संकर्षण की मुट्ठी में है, संकर्षण की दिव्य शक्ति की वजह से सब अपने अपने जगह में है और चल रहे हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि देखिए, हम कहते हैं कि हम इतने प्रगतिशील हो गए हैं, हमने बड़े बड़े गाड़ी मोटर कार एरोप्लेन बनाए हैं, लेकिन कितने टक्कर होते हैं, गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर करते रहते हैं हाईवे पे, देखिए कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब भी हम बंबई से बेलगाम बस से आते हैं तो कम से कम 4-5 बड़े एक्सीडेंट तो देखते ही देखते हैं कि रास्ते में कोई बस यहां पड़ी है, कोई लॉरी ट्रक वहां पड़ी है। इतने प्रगति करते हैं, बड़े बड़े गाड़ी रास्ते वगैरह बनाते हैं, फिर भी टक्कर होते रहते हैं। यहां तक कि हवाई जहाज की टक्कर भी हम अखबारों में पढ़ते हैं, दो हवाई जहाज के बीच में टक्कर हुआ। लेकिन कभी आपने ऐसे सुना है कि दो ग्रहों का टक्कर हुआ? आकाश में ग्रह घूम रहे हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में कोई सिग्नल में कोई गड़बड़ हो गई। देखा आपने रेलगाड़ी कैसे टक्कर हो गई थोड़े में, एक महीने पहले बंगाल में? वैसे कोई भगवान के ब्रह्मांड में ट्रैफिक कंट्रोल में सिग्नल का कोई गड़बड़ होकर टक्कर होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों ऐसे होता है कि सारे ग्रह अपने अपने चक्र में चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई अपने रास्ते से बाहर नहीं जाता। हम गाड़ी चलाते हैं, आगे पीछे देखते हैं किसको ओवरटेक कर सकते हैं, आगे इस तरफ जाते सामने गाड़ी आती है, टक्कर हो जाता। लेकिन ग्रह देखिए फर्स्ट क्लास अपने अपने जगह में चल रहे हैं। हर एक ग्रह के एक अधिष्ठाता देव होते हैं, ठीक ठाक उनकी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कोई अपने लेन के बाहर नहीं जाता। क्यों है? ये सब संकर्षण की शक्ति है, संकर्षण ने सब बनाए रखा है, इसको अपने मुट्ठी में पकड़ रखा है इनकी ओजस शक्ति से। इस प्रकार से बलराम जी तो आदि गुरु है ही, आध्यात्मिक बल के स्रोत तो है ही, साथ साथ उन्होंने ये सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अनंत शेष के रूप में और संकर्षण के रूप में धारण किया हुआ है। तो ये है बलराम जी। तो वही बलराम रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए और कृष्ण भगवान के सहित उन्होंने छोटे छोटे बालक की तरह, साधारण बालक की तरह उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। देखिए अभी हम समझ में आया हमें कि बलराम जी कौन है, कितने विशाल है, उनकी शक्ति क्या है। एक छोटे से घर को, छोटे से शहर को, छोटे से मंदिर को बनाए रखने के लिए कितना कष्ट होता है, कितने चिंताएं होती हैं, कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। और बलराम जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाए रख रहे हैं, तो उनकी शक्ति कितनी विशाल होगी। और ऐसे विशाल शक्ति वाले बलराम वो आके साधारण बालक की तरह माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए और लीलाएं करने लगे और उनके भी प्रभु और उनके भी उगम स्थान कृष्ण भगवान उनके साथ में आए। तो देखिए यह अद्भुत लीला, बड़ी विचित्र बात है ये। केवल जो भगवान के भक्त होते हैं वही इन बातों को, इन तत्वों को समझ सकते हैं, अन्यथा सभी भ्रमित हो जाते हैं, सोचेंगे कि ये सब दंत कथा है, इसमें कोई सत्य की बात नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है ये, भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन यही तो अद्भुत बात है कि छोटे बच्चों का कार्य करते हुए वो कभी भी भगवान के पद को त्यागते नहीं है। वास्तव में ये पद नहीं है भगवान का, ये पद मतलब वो होता है जो बदलता रहता है। अभी एक व्यक्ति उस पद पे है, फिर वो उसको छोड़ना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति उस पद में आ जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन प्राप्त करके या थोड़ा इधर उधर थोड़े पैसे देकर इधर उधर कुछ ऊपर पद में चले जाए, भगवान बन जाए, नहीं। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, जीव हमेशा जीव ही रहता है। तो इसीलिए कृष्ण बलराम भी जब छोटे बालक की लीला भी करते हैं तो भगवान ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कम हो जाते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है क्योंकि वो छोटे बालक के रूप में इधर उधर भटक रहे हैं, ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शक्ति कम हो जाती है, शक्ति वैसे की वैसे ही रहती है। लेकिन ऐसे प्रतीत होता है कि बिल्कुल नाजुक, कमजोर, छोटे से अबला जो है बालक है, ये पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि बलराम और कृष्ण अपने बाल अवस्था में हैं और फिर सारे ब्रजवासी गोकुल महावन को छोड़कर वृंदावन में आए, क्योंकि असुरों का भय था कि कंस, इतने सारे असुरों को आदेश दिया है कंस ने कि जाके सारे बालकों को मारो, कृष्ण को मारो। तो इसके भय से सारे ब्रजवासी कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन में चले गए। और हम सुन रहे थे कल की किस प्रकार वृंदावन में वो कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे। अभी जब कृष्ण और बलराम की आयु 5 साल से ज्यादा हो गई, 6 साल तक पहुंच गई, तो गोपों ने उनको गायों का की जिम्मेदारी दे दी। अब तक तो वो केवल गाय के बछड़ों को संभालते थे, उनको चराने ले जाते थे। 5 साल तक की उम्र जो है इसको कौमार अवस्था कहते हैं, 6 साल से 10 साल की उम्र जो होती है उसको पौगंड कहते हैं, और 11 से 15 इसको कैशोर अवस्था कहते हैं, और 16 से व्यक्ति युवक बन जाता है, युव अवस्था शुरू हो जाती है। तो जब तक कृष्ण और बलराम कुमार अवस्था में थे तो गोकुल महावन में थे करीब करीब, और उस समय वो वात्सल्य रस का अनुभव लेते थे। और जब उनको बाहर वन में जाने का आदेश मिला तो केवल गाय के बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे, लेकिन गायों को नहीं ले जाते थे। लेकिन जब पौगंड अवस्था में प्रवेश किया उन्होंने, 6 साल की आयु हो गई वृंदावन में, तब गोपों ने उनको गायों की जिम्मेदारी भी सौंप दी और गायों को चराने ले जाते थे। लेकिन पौगंड अवस्था में जैसे वो कुमार अवस्था में जैसे वो लीला करते थे वन में जाकर गाय के बछड़ों के साथ में, वैसे ही लीला आरंभ रही, चालू रखी उन्होंने, सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। कभी कभी बलराम और कृष्ण जब अलग अलग पशुओं की नकल करके थक जाते थे तो बलराम जी किसी अपने ग्वालबाल मित्र के गोदी में सर रख के सो जाते थे, और फिर दूसरे कोई उनके मित्र आकर पंखा, कभी कृष्ण स्वयं भी आके पंखा चलाते थे, कुछ बड़े पत्ते होते थे पेड़ के उनको लेकर पंखा बनाकर उनको हवा देते थे, और बाद में जाके बलराम जी के पैर मालिश करते थे, और बाद में कृष्ण भगवान भी खुद खेलते थे और कृष्ण भगवान विश्राम करते थे, सारे अन्य ग्वाल बाल आके उनको हवा देते थे पंखे से, उनके पैर दबाते थे। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम विश्राम करते थे और बाकी जो ग्वाल बाल हैं वो खेलकूद में मग्न रहते थे, और जब वो थक जाते थे तो वो भी थोड़ा विश्राम करते, फिर कृष्ण बलराम के लिए सुंदर गीत गाते, इस प्रकार से मधुर लीला करते रहे वो। अब देखिए स्वयं कृष्ण भगवान भी बलराम जी के पैर दबाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और बलराम जी जब लेटे रहते थे तो इस प्रकार से उनको हवा देना, उनको अच्छी तरह से मालिश करना, कृष्ण भगवान खुद बलराम की सेवा कर रहे हैं। बलराम की भी क्यों, अन्य ग्वाल बालों की भी सेवा कृष्ण भगवान करते थे। जब अन्य ग्वाल बाल भी लेटे रहते तो कृष्ण बलराम उनकी सेवा करते थे। तो ये मधुर भाव जो है इसके बारे में सोचना बहुत कठिन है, समझना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार से जो भगवान है परम सत्य वो ग्वाल बालों के पैर मालिश कर रहे हैं, ग्वाल बालों को अपने कंधे पे उठाकर इधर उधर लीला कर रहे हैं, किस प्रकार से साधारण बालक की तरह कृष्ण और बलराम बंदर की नकल कर रहे हैं, पक्षी के आवाज की नकल कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कुश्ती करते हैं, अपने मित्रों को अपने कंधों पर बिठाकर ले जाते हैं, अपने मित्रों से डरते हैं, प्रेम करते हैं। ये है कृष्ण बलराम की अनंत और अद्भुत लीलाएं। ऐसे करते करते कई असुरों का भी वध किया उन्होंने, वत्सासुर का वध किया, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे अगले हफ्ते में। फिर बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया जो गधे के रूप में था, और फिर सब लौट के आते थे, हर दिन कोई ना कोई असुर होता था जिनका वध करते थे कृष्ण या बलराम, और लौट के आते थे तो उनका वाहवाकार होता था, सब ग्वाल बाल जाके ब्रजवासियों को बताते थे कि आज कृष्ण ने इस असुर का वध किया, बलराम ने उस असुर का वध किया, इन दोनों भाइयों ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किया आज। और सारे वृंदावन के निवासी जो है चकाचौंध रह जाते थे, और उस सोच से लगते थे कि ये है कौन ये कृष्ण बलराम, फिर इस बात को भूल जाते थे, और फिर अपने अपने घर में जाते थे। कृष्ण बलराम, माता यशोदा कृष्ण को तैयार करते थे, नहला धुला के गहने पहनाते थे, उसी प्रकार से रोहिणी देवी बलराम जी को भी इसी प्रकार से नहला धुला के उनको गहने पहनाकर खिलाती थी। और उसके बाद में थक जाते, इतने थके हुए होते हैं कृष्ण और बलराम कि जैसे छोटे बालक जब खेल कूद करते हैं बहुत ज्यादा शाम के समय दोपहर के समय, और थक कर आते हैं रात को तुरंत सो जाते हैं, जैसे ही बिस्तर पे लेट जाते हैं कि नींद आ जाती है थकावट के मारे, तो उसी प्रकार से साधारण बालक की तरह कृष्ण और बलराम लीला करके आ जाते थे, मानो कि वो थक गए हैं और बिस्तर पर लेट के तुरंत नींद आ जाती थी। अब देखिए भले कृष्ण बलराम कैसे थक सकते हैं, थोड़ा सा काम करने से हम थक जाते हैं, लेकिन वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाए जा रहे हैं, अनादि काल से चलाए जा रहे हैं, और ऐसी लीलाएं करते जा रहे हैं, उनको थकावट की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। थकावट क्यों होती है? थकावट इसलिए होती है कि ये भौतिक शरीर हमारे पास, ये भौतिक ब्रह्मांड का नियम है कि यहां सब चीजों का घटन होता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में घटन की बात ही नहीं है, वहां केवल विकास और वृद्धि की बात है। हर चीज का विकास होते रहता है, सौंदर्य का विकास होते रहता है, शक्ति का विकास होते रहता है, कोई चीज नीचे नहीं आती है। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, संकर्षण भी जिनको आकर्षण करके देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी देवी के गर्भ में डाला गया। तो ये आकर्षण जो है, ये शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे भी हम देखते हैं कि किसी आप गेंद को या पत्थर को रखिए और छोड़िए, क्या होगा? पत्थर आकर्षित हो जाएगा पृथ्वी की ओर, सही बात है। हम भी खिड़की के बाहर अगर एक कदम बाहर रखेंगे तो आकर्षित होंगे किसकी ओर? जमीन की ओर। लेकिन ऐसे आकर्षण का फल क्या होता है? हमें लग जाता है, चोट पहुंच जाती है। मतलब संसार, ये भौतिक ब्रह्मांड के आकर्षण से चीजों का पतन होता है। लेकिन जब हम बलराम और कृष्ण से आकर्षित होते हैं तो ऐसे आकर्षण से क्या होता है, हम उठ जाते हैं। देखिए आकर्षण तो दोनों जगह होते हैं, तो आकर्षण का स्रोत वही है। कृष्ण बलराम के आकर्षण से हम उठ जाते हैं, हमारी चेतना प्रफुल्लित हो जाती है, लेकिन भौतिक संसार के आकर्षण से हमारा पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम वो तो सबको आकर्षित कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी चीजों का विकास होता है, आकर्षित करके सभी चीजों को उठा रहे हैं, वो वहां थकावट का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अपने लीला को और मधुर बनाने के लिए वो ऐसी लीला करते मानो कि वो बहुत थक गए हैं। और फिर माता यशोदा और रोहिणी देवी कृष्ण बलराम को सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं और सुबह उनको जगाते हैं और फिर से वही लीला चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम लीला करते रहे। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, कृष्ण भगवान ने अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर दिया और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित चकाचौंध रह गए। ब्रह्मा जी का सद्दावा डोल हो गया कि ये कृष्ण की शक्ति क्या है। उस समय अद्भुत घटना ये हुई थी कि एक साल ब्रजवासियों को पता नहीं चला था कि क्या हुआ है। जब अघासुर का वध किया कृष्ण भगवान ने, उसके बाद में एक साल तक ब्रजवासियों को अघासुर के वध के बारे में ज्ञान नहीं हुआ। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों, कि एक साल बीत गया और अभी तक ब्रजवासियों को पता नहीं चला। उस समय सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और गाय के बछड़ों को छुपा के रखा था गुफे में, और कैसे कृष्ण भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया। और इस एक साल के दौरान सारे गाय के बछड़े और ग्वाल बाल सब कृष्ण ही थे। साक्षात कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित करके ग्वाल बालों का और गाय के बछड़ों का रूप धारण किया, उनके डुप्लीकेट बिल्कुल थे। और जब बलराम जी ने देखा कि यह अद्भुत चीज है कि जो गाय है वो गोवर्धन के ऊपर थे, लेकिन गाय के बछड़ों को उन्होंने देखा जो कि उनके बछड़े भी नहीं है, किसी दूसरे गाय के बछड़े हैं, लेकिन उनको देखकर इतने आकर्षित हुए कि दौड़ते दौड़ते नीचे आए, ये न देखते हुए कि रास्ते में कितने पत्थर हैं, रास्ता अच्छा नहीं है, हो सकता है वो गिर भी सकते हैं। लेकिन गायों ने ऐसे देखा नहीं, गाय दौड़ते दौड़ते आए और दूध पिलाना आरंभ किया। हालांकि ये जो गाय के बछड़े हैं थोड़े बड़े आयु के थे, अपने मां से दूध पीने की आयु चली गई थी उनकी, लेकिन फिर भी ये गाय के बछड़े जो है इन गायों से जो उनकी मां नहीं है उनकी गाय पीने लगे, दूध पीने लगे। क्यों? क्योंकि गायों के प्रति, गाय ग्वाल बालों के प्रति इतना प्रेम उनका था कि खुद जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो दूध गिरते जा रहा था। तो बलराम देख रहे थे, आश्चर्य की बात है ये कैसे हुआ। और ब्रज में भी देख रहे थे बलराम कि जो गोपियां हैं और गोप हैं वो उनके पुत्रों को, जो गोपगण है ग्वाल बाल हैं, इतना ही प्रेम कर रहे हैं जैसे कि वो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। देखिए ब्रज की खूबी ये है कि ब्रजवासी कृष्ण को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते थे, ये है वृंदावन। तो जब बलराम ने देखा कि अभी ग्वाल जो गोपगण हैं और गोपियां हैं वो अपने पुत्रों को कृष्ण जितना ही प्रेम करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तो उन्होंने एक बार कृष्ण को बुलाया। जैसे जैसे एक साल अघासुर के वध के पश्चात खत्म होने जा रहा था, डुप्लीकेट ग्वाल बाल और गाय के बछड़े अपनी लीला करते जा रहे थे, तो बलराम जी ने कृष्ण भगवान को बुलाया कि कृष्ण मुझे सच सच बताओ मामला क्या है। मैंने ये सब देखे हैं, इतने महीनों से मैं देख रहा हूं कि ये जो ग्वाल बाल हैं और गाय के बछड़े हैं जो हमारे हमेशा हमारे साथ में आते थे, ये वो ग्वाल बाल और गाय के बछड़े नहीं हैं। पहले मैं सोच रहा था कि कोई शायद ये देवता की चाल है, या हो सकता है कोई महापुरुष ने ऐसे कोई हरकत की हो, या कोई ऐसे उनकी योग शक्ति से कुछ ऐसे किया हो। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मैंने अनुमान लगाया है कि ये तुम ही हो, त्रिकालज्ञ है, वो भी तो भगवान है। तो ये भी एक लीला है कि बलराम की लीला शक्ति, भगवान की लीला शक्ति ने भी बलराम के ऊपर ऐसे एक लीला की कि बलराम ऐसे समझ रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, मानो कि मुझे नहीं मालूम कि कृष्ण भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है। और उस दिन जब ये लीला हुई, जब ब्रह्मा जी वहां आए, तो उस दिन बलराम जी का जन्मदिवस था, इसलिए बलराम जी गोकुल में ही रह गए, वृंदावन में ही रह गए थे। इसलिए उनको ये लीला के बारे में मालूम नहीं था कि ब्रह्मा जी आए, उन्होंने चोरी कर ली है ग्वाल बालों के। क्योंकि आपको मालूम है कि जब कृष्ण भगवान जमुना वो गायों को ढूंढने के लिए गए थे, तो उस समय ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वाल बालों का और बछड़ों का अपहरण करके छुपा दिया उनको। अगर उस समय बलराम होते क्या ये हो सकता था? तो देखिए, भगवान कृष्ण की लीला भी ऐसी है, सारे व्यवस्था उन्होंने ऐसे परफेक्ट कर ली कि बलराम जी भी नहीं थे रास्ते में और कृष्ण भगवान भी नहीं थे, तो ब्रह्मा जी के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। अगर ब्रह्मा जी के लिए रास्ता खुला न छोड़ते, बलराम जी अगर वहां होते, तो ब्रह्मा जी की क्या शक्ति बलराम के सामने, कैसे ले पाते? तो देखिए, बिल्कुल टाइमिंग भी ऐसे हो गया, काल भी ऐसे हो गया कि बलराम जी अपने जन्मदिवस के लिए रोहिणी देवी उनको सजा दिला रहे थे और उधर कृष्ण भगवान चले गए। तो इसलिए जिस एक दिन में बलराम नहीं आए, उसी एक दिन में यह घटना हुई। और इसलिए बलराम ने फिर कहा, मुझे बताओ ये क्या बात है? तब कृष्ण भगवान ने बता दिया और बलराम जी को पता चला। तो ये एक लीला है, लीला को और भी मधुर बनाने के लिए भगवान ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करते रहते हैं। और आगे चल के फिर गायों को चराते थे कृष्ण बलराम अपने ग्वालवाल मित्रों के साथ में, शाम को फिर से लौट कर आते थे। सारे ब्रजवासी और दोनों भाइयों की अपेक्षा में रहते थे कि कब आएंगे, कब आएंगे। उनको ऐसे लगता था कि अभी सारी दुनिया हमारी शून्य हो गई है, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना है वो? कौन सा श्लोक कौन सा है? आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनन मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एस एव नापरः। वो कहते हैं कि कृष्ण ही मेरा प्राणनाथ है, लेकिन ये श्लोक नहीं है। श्लोक कौन सा है बोलिए? शिक्षाष्टकम का याद करिए। हाँ, लेकिन युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्रावेशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु ने विरह की भावना दिखाई है जो वास्तव में ब्रजवासियों की थी। युगायतम निमेशेन, एक निमेश का समय जो है जो कि क्षण से भी कम है, युग के समान प्रतीत हो रहा है। युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्रावेशायतम, जैसे आंखों के पलक से भी कम, और आंखों से अश्रुधारा बहती है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा संसार शून्य ही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण और बलराम वन में चले जाते थे गायों को चराने के लिए, तो सारे ब्रजवासी सोचते थे कि हर एक क्षण एक युग के बराबर है, और सोचते थे कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, शाम कब आएगी। और अपने काम करते करते तो इंतजार करते, कृष्ण के बारे में बोला करते थे, बलराम के बारे में बोला करते थे, और जब शाम को वह आते तो ऐसे उनका पूरा दिल भर जाता। और इस प्रकार से कृष्ण बलराम लीला करते रहे, और कृष्ण भी बलराम के गुणगान करने लगे जाते जाते कि देखो बलराम, आप तो पूजनीय हो, आप मेरे बड़े भाई हो, और इतना ही नहीं, आप साक्षात भगवान हो। और देखो ये सारा वृंदावन का जो वन है कितना आपके सेवा के लिए तत्पर है। ये जो वृक्ष है ये अपने अंधकार में है, अज्ञान के अंधकार में। इस वृक्ष का शरीर तो तमोगुण का होता है ना, इसलिए भगवान बोल रहे हैं बलराम से कि ये तमोगुण के शरीर उनको मिला है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अपने तमोगुण के अंधकार से बाहर आना चाह रहे हैं आपकी सेवा करके, आपके चरण कमलों में झुकना चाह रहे हैं, इसलिए उनके सारे फल फूल आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। है तो ये वैसे पिछले जन्म के मायावादी जो निराकार में लीन होना चाहते थे इसलिए उनको ऐसे शरीर मिल गए, लेकिन अभी उससे दूर होकर वो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके भक्त होना चाहते हैं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। और ये जो मधुमक्खी है जो आपके इर्द गिर्द आवाज करते हुए जा रहे हैं ये अवश्य आपके भक्त ही है, जो कि आपका निजी संग प्राप्त करने के लिए ऐसे आपका संग छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं। और ये पशु हिरण वगैरह देखिए कितने आपके पास पास में आते हैं, आपका संग छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी बड़े ऋषि मुनि हुए होंगे जो आपके पास ही रहते हैं। और देखो कि ब्रज भूमि कितनी प्रफुल्लित हो उठी है आपके चरण कमलों के स्पर्श से। और देखो कि हर जगह सारे पेड़ पौधे सब कुछ आपका दर्शन करके सब खिल उठे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने बलराम की स्तुति की। इसलिए आप सारे ब्रज के लिए पूजनीय है, सारे ब्रह्मांड के लिए पूजनीय है। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम एक दूसरे की सेवा करते, ग्वाल बालों के संग में गाय चराते और वापस आके अपने माता पे, अपने माता रोहिणी देवी और यशोदा माता से सेवा स्वीकार करते, सो जाते और इस प्रकार से उनकी लीला चलती रही। कई बार लोग पूछते हैं भगवान के धाम में जाएंगे तो करेंगे क्या, बोर नहीं हो जाएंगे, वहां कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, मैगजीन नहीं, गपशप नहीं, वहां तो बहुत कुछ है, टीवी भी है लेकिन सब ऐसा दूरदर्शन है कि बस आप उसको छोड़ नहीं सकते। यहां के टीवी खोलते हैं बोर हो जाते हैं, दूसरा लगाते हैं प्रोग्राम उससे बोर हो जाते हैं, तीसरा लगाते हैं, लेकिन वहां जो लीलाएं चलती रहती हैं वो इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है कि बस चलते रहता है, चलते रहता है। अनादि काल से चलते आ रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, शाश्वत लीलाएं हैं। लेकिन कोई भी ग्वाल बाल बोर नहीं होता, उब नहीं जाता भगवान के धाम में, ऐसी लीलाओं में कोई उब नहीं जाता। अगर कोई बच्चे को बोले स्कूल जाओ, जीवन भर स्कूल जाते रहो, अगर इस उम्र में भी आपको बोला जाए कि जैसे बचपन में स्कूल जाते थे सारा जीवन भर सुबह जाना शाम को आना स्कूल, तो उब जाएंगे। लेकिन वहां गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल जो है उब नहीं जाते, रोज कृष्ण बलराम के साथ में गायों को चराने ले जाते हैं, उब नहीं जाते हैं। क्यों? नित्य नव नवायमान, कृष्ण की लीलाएं हमेशा फ्रेश रहते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें उब नहीं जाता। सुबह जाते हैं खेलते हैं, वही चोर पुलिस, वही खेलना फुटबॉल खेलना, कोई फलों से कुश्ती करना, वही खेल, लेकिन हर एक खेल हर रोज उसका अलग ही कुछ स्वाद आता है। और फिर शाम को आते हैं भोजन करते हैं, हर दिन की लीला खेल अलग अलग कोई नया एक आनंद उसमें आता है उनको। इसलिए यही लीलाएं चल रही हैं गोलोक वृंदावन में। और उनका थोड़ा सा ट्रेलर दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने धाम को ही लेकर आते हैं यहां, और फिर यही लीलाएं जो है प्रदर्शित करते हैं हमारे लिए, ताकि हम समझें कि गोलोक में क्या चल रहा है, वहां भगवान क्या करते हैं, उनके भक्त क्या करते हैं। और अगर हम भी शुद्ध भक्त बनकर वहां चले जाए तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे ही लीला में हम शामिल हो सकते हैं गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो नित्य भगवान का संग कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जाप कीर्तन से, वैष्णव संग से, भागवत श्रवण कीर्तन से हम इस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण।
तो बलराम जी के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। कल दोपहर को हम ये शाम को चर्चा ये कर रहे थे कि बलराम जी का आविर्भाव कैसे हुआ, बलराम जी वैसे हैं कौन, और आज सुबह ये चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बलराम जी आदि गुरु हैं और उनके दिव्य शक्ति से ही ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड वो धारण कर रहे हैं, उन्हीं की ओजस शक्ति के द्वारा ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, अनंत शेष के रूप में वो सारे ब्रह्मांडों को धारण कर लेते हैं। और जो आध्यात्मिक बल है वो भी बलराम जी से आता है, इसलिए उनका नाम है बलदेव या बलराम, जिस बल को प्राप्त करने से सबसे ऊंचे दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वैसे बलदेव या बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तारित रूप हैं। सबसे पहले कृष्ण अपने आप को बलराम के रूप में विस्तारित करते हैं, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं। पहले चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर उनसे आते हैं दूसरे चतुर्व्यूह, वही वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसके बीच में नारायण भी आते हैं। और फिर जो दूसरे चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनको मूल संकर्षण बोलते हैं, उनसे महाविष्णु आते हैं। और ऐसे महाविष्णु से फिर क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि दूध के सागर में हरेक ब्रह्मांड में निवास करते हैं। तो देखा जाए तो बलराम जी आदि विष्णु हैं, आदि नारायण हैं, मूल संकर्षण के भी मूल हैं बलदेव बलराम। इस प्रकार से बलराम में और कृष्ण में एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। कृष्ण भगवान पीतांबर पहनते हैं और बलराम जी नीलांबर पहनते हैं। वैसे बलराम जी के कंधों में हमेशा हल रहता है, लेकिन फिर भी वो बांसुरी बजाते हैं। जैसे कृष्ण बजाते हैं वैसे बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं। इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है, लेकिन भागवत में स्पष्ट स्पष्ट वर्णन है कि कृष्ण और बलराम दोनों ही बांसुरी बजाते हैं, और दोनों के बांसुरी से सारे ब्रजवासी के प्राणी जो है विस्मित हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी में वो अद्भुत मिठास है, लेकिन महत्व की बात है कि बलराम जी भी बांसुरी बजा लेते हैं, और हमेशा ग्वाल बालों की तरह दोनों भाई कृष्ण और बलराम अपने कंधों में रस्सी डालते हैं, और बांसुरी तो होती ही है और एक बाजा होता है जो यहाँ पीतांबर अपने धोती में वो बांध देते हैं, जिससे कि वो गायों को बुला सकें। और रस्सी का क्या काम होता है कि जब को दोहन करते हैं गायों का जो पिछले दो पैर है उनको बांधने के लिए रस्सी रखते हैं, जैसे सर्वसाधारण ग्वाल बाल करते हैं, तो वैसे सारे ग्वाल बाल रस्सी रखते हैं। तो कृष्ण और बलराम भी अपने कंधों के ऊपर वो रस्सी रख लेते हैं, मानो कि जैसे साधारण ग्वाल बाल हैं। तो दिखने में ऐसे ही लगते हैं ये सर्वसाधारण ग्वाल बाल, उनके बीच में उनका उठना बैठना खाना पीना रहन सहन उनके बीच में ही होता है। उन्हीं के संग में सारे लीलाएं करते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह साधारण है। लेकिन यही कृष्ण और यही बलराम जो कि आदि विष्णु है, वही सारे चतुर्भुज के स्रोत हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सारे मूल जो ब्रह्मांड है वो उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। बलराम जी सेवक भगवान है, वो भी भगवान है लेकिन उनको सेवक भगवान कहते हैं, सर्विटर गॉडहेड। वैसे राधा रानी भी सेवक हैं, तो प्रश्न ये उठ सकता है कि श्रीमती राधा रानी में और बलराम जी में अंतर क्या है। अंतर ये है कि बलराम जी भगवान है, सेवक भगवान है, कृष्ण की सेवा करने के लिए भगवान ही है वो। बलराम में और कृष्ण में अंतर इतना ही है कि बलराम जी कृष्ण की सेवा करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है, बस। तो दोनों भगवान हैं लेकिन बलराम जी सेवक भगवान, शक्तिमान है, वो भी भगवान के तत्व विष्णु तत्व कहलाते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी वो भी तो सेवक हैं, लेकिन शक्तिमान, शक्ति है वो। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है, बलराम जी भी शक्तिमान है, शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन राधा रानी शक्ति है, शक्ति तत्व के स्रोत हैं, और कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं। तो ये अंतर समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्ण भगवान सबसे परम आराध्य देव हैं और श्रीमती राधा रानी सबसे परम आराधक हैं। आराधक कहते हैं ना, आराधना करने वाली आराधक हैं। तो इस प्रकार से दोनों राधा रानी और बलराम कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। राधा रानी, कृष्ण भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर दिया राधा रानी के रूप में, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए और सेवा करने के लिए। उसी प्रकार से बलराम का विस्तार भी हुआ, लेकिन फिर भी तत्व में अलग हैं। राधा रानी शक्ति तत्व कहलाती हैं और बलराम जी विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी हमेशा कृष्ण के संग में रहते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक लीला में कहीं न कहीं बलराम जी उपस्थित होते ही हैं, किसी न किसी रूप में। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा पांचों रसों में करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान को प्रेम करने के पांच रस होते हैं। कौन से हैं वो पांच रस? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। सख्य रस वो रस है जिसमें भगवान को सेवा करने की जो भावना है उतनी विकसित नहीं हुई है। गोलोक वृंदावन में जहां तक शांत रस है बहुत कम है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में जो भी कुछ है उसमें मधुर रस की मिलावट है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में परम रस मधुरी रस है, क्योंकि वो माधुर्य धाम है गोलोक वृंदावन। माधुर्य रस ही वहां परम है और अन्य जो भी रस हैं वो केवल माधुर्य रस की सहायता करने के लिए है, बस। वैसे देखा जाए तो वैकुंठ लोकों में दास्य रस, शांत रस, इनका ज्यादा महत्व दिखाई पड़ता है, लेकिन गोलोक वृंदावन में सबसे ऊंचा है माधुरी रस, प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका का रस। जैसे गोपियां कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं, तो यह रस प्रमुख है गोलोक वृंदावन में। तो जो शांत रस इत्यादि है आदि, ये सारे मधुर रस में सहायता करने के लिए ही है। तो शांत रस में सबसे पहली बात तो सारा धाम ही है, गोलोक धाम। तो गोलोक धाम, भगवान के गहने, भगवान के कपड़े और जो भी श्रृंगार है, सब कुछ, सब बलराम के विस्तारित रूप है। सारा गोलोक धाम ही बलराम जी के संचालन है, इसलिए बलराम जी शांत रस में इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। और दास्य रस में तो जैसे पैर मालिश करना, जैसे हम सुबह को चर्चा कर रहे थे, कृष्ण थक जाते हैं तो बलराम जी उनकी पैर दबाते हैं, ये अन्य प्रकार की सेवा करते हैं। जब माता यशोदा उनकी उनको सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं कृष्ण भगवान को और गहने पहनाते हैं, तो बलराम जी और अन्य गोप जो ग्वाल बाल हैं माता यशोदा की सहायता करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। ये गहने दे दो, ये कपड़ा इधर से दे दो। तो जब कृष्ण को सजाते हैं माता यशोदा, तब बलराम जी और गोप गण भी वहां सहायता करते हैं। और सख्य रस में तो है ही, जब से दोनों बड़े हुए, बड़े होते होते दोनों कौमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में भी साथ में ही लीला करते रहे। जो भी लीलाएं हुई सब साथ में कृष्ण बलराम ने किए, साथ में कुश्ती की, साथ में उन्होंने चोर पुलिस खेला, साथ में सारे जो भी गायों को चराने ले गए, जो भी लीलाएं हुई दोनों के साथ में सख्य रस में। इसलिए कई तस्वीरें आप देखेंगे कृष्ण बलराम की, बलराम अपने हाथ कृष्ण के कंधे पर ऊपर ऐसे रख के खड़े हुए हैं, जैसे मानो के दो मित्र खड़े हैं। तो ये वो सख्य रस में सेवा करते हैं बलराम। और वात्सल्य भाव में, जैसे बलराम जी तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई की रक्षा करना। नंद महाराज और माता यशोदा हमेशा देखती थी कि कृष्ण कहीं अकेला न चले जाए, साथ में हमेशा बलराम हो। और बलराम नहीं होते तो माता यशोदा और नंद महाराज बड़े चिंतित हो जाते। जैसे एक बार जब बलराम जी नहीं गए तो उस दिन कालिया दमन की लीला हुई, और कालिया के वश में जब थे कृष्ण भगवान, ऐसे लीला कर रहे थे यमुना में, और जब सारे अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे वातावरण में, तो नंद महाराज और माता यशोदा और सारे ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या हो रहा है, और बलराम नहीं है कृष्ण के साथ में, कौन रक्षा करेगा कृष्ण की। और दौड़ते 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 चले गए। हाँ, यहां पर बलराम जी हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि उनके छोटे भाई की शक्ति क्या है, वो जानते हैं कि ये तो साधारण छोटे भाई नहीं है। तो कृष्ण हंस रहे थे उनका शोक देखकर। और जब सारे ब्रजवासीगण वहां गए, उन्होंने देखा कि अभी कृष्ण 2 घंटे कालिया के वश में है, यूं ही कृष्ण कुछ हिल नहीं रहे हैं, तो प्राय उनके प्राण ही त्याग दिया उन्होंने। लेकिन उस समय भी बलराम जी आराम से खड़े होकर वहां हंस रहे हैं, उनको मालूम था। लेकिन बात यह है कि उस समय जब नंद महाराज और माता यशोदा और अन्य ब्रजवासियों ने देखा कि बलराम जी कृष्ण के साथ वो नहीं गए हैं, तो पहला प्रश्न है कि रक्षा कौन करेगा। तो जिस प्रकार से माता यशोदा नंद बाबा भी कृष्ण के ऐसे ही दृष्टि से देखते थे कि हम कृष्ण की रक्षा नहीं करेंगे, कृष्ण का देखभाल नहीं करेंगे, तो कौन बचाएगा कृष्ण को? असुर आएंगे, बीमारी आ जाएगी, सांप आ जाएगा, कहीं उधर उधर दुर्घटना हो जाए। तो ये रक्षा करने की भावना जो होती है, ये एक वात्सल्य भावना है, वात्सल्य रस की भावना है। तो इस दृष्टि से बलराम जी कृष्ण भगवान की रक्षा करते हैं अपने लीला में, इसलिए वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। और फिर माधुरी रस, प्रश्न ये आता है कि बलराम जी भला माधुरी रस में कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? मधुर रस में वो तो पुरुष है बलराम जी, मधुर रस मतलब गोपी होना चाहिए, फिर कैसे बलराम जी मधुर रस में सेवा करते हैं? उनके विस्तारित रूप में कौन नाम है क्या नाम उनका? अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जो कि राधा रानी की बहन है, छोटी बहन, तो वो राधा रानी की सेवा करती हैं, और बलराम जी के विस्तारित रूप है वो। तो बलराम जी अपने आप को विस्तार करके अनंग मंजरी बनती है, और मधुर रस का आस्वादन भी बलराम जी कर लेते हैं कृष्ण की सेवा में। इस प्रकार से बलराम 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्राय जहां भी कृष्ण का नाम आता है वहां बलराम का नाम भी साथ में आता है। हाँ, कहीं कहीं रासलीला के समय बलराम जी का नाम नहीं आता या इधर उधर नहीं आता, लेकिन बलराम जी की भी अलग रासलीला होती है, बलराम रस यात्रा। तो इस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण जोड़ी है इनकी, जिस प्रकार से राधा कृष्ण भी एक जोड़ी है, ये अलग प्रकार की जोड़ी है कृष्ण बलराम की। तो इस प्रकार से भगवान बलराम भगवान कृष्ण की सेवा करते रहे। अब आगे कालिया दमन की लीला के बाद अरिष्टासुर का वध किया। अरिष्टासुर के पहले बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और उसके बाद में थोड़े दिन बाद प्रलंबासुर का वध किया। इन दोनों असुरों का वध की जो लीला है ये हम अगले हफ्ते में सुनेंगे विस्तार में, एक के बाद एक असुरों के वध के प्रवचन करेंगे, एक एक उसमें जब महत्व क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में क्या टीका लिखी है, हरेक असुर के पीछे, हरेक असुर जो है एक अनर्थ को का प्रतीक है हमारे हृदय में, तो इनके बारे में हम आगे चल के सुनेंगे। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर का भी वध किया बलराम ने कृष्ण के साथ में। आगे चल के मथुरा में उन्होंने मुष्टिक का भी वध किया और अन्य जो वहां कुश्ती करने वाले पहलवान थे, कंस के जो असुर मित्र थे, उनका भी वध किया। इस प्रकार से बलराम जी ने कृष्ण का साथ असुरों के वध करने में भी किया और ऐसे लीला करते रहे। और जब प्रलंबासुर का वध हुआ और दूसरी बार वन में जो अग्नि हुई वो कृष्ण भगवान ने बंद कर दी, खत्म कर दी, तो सारे ब्रजवासी गण बड़े भ्रमित हो गए। उनकी सभा हुई, सभा में बातचीत होने लगे कि ये कौन है कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम ऐसे इतने अद्भुत लीला किया करते थे, हर रोज कोई ना कोई अद्भुत लीला हुआ करती थी, इसलिए ब्रजवासियों के विस्मय के का कोई अंत नहीं होता था, उतार चढ़ाव उनके मन में होते रहते थे। एक दिन सोचते कृष्ण साधारण बालक है, दूसरे दिन जब कोई अद्भुत लीला करते कृष्ण भगवान तो सोचते ये कौन है, तीसरे दिन सोचते ये तो साधारण हमारा ही बच्चा है, चौथे दिन कोई और अद्भुत लीला करते सोचते थे ये अवश्य कोई देवता है। ऐसे इनके मन बदलते रहते थे, कभी भी कृष्ण और बलराम को समझ नहीं पाए। तो प्रलंबासुर और के वध के बाद में सारे ब्रजवासियों की फिर से सभा हुई और उनमें ये निर्णय निकला कि हाँ, कृष्ण और बलराम अवश्य कोई देवता होंगे, नहीं तो ऐसे अद्भुत कार्य कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्रजवासी गण जो है वो कृष्ण बलराम को प्रेम करते रहे। कभी उनको देवता कहते थे, कभी कहते थे कि देवताओं को कृपा है, कभी कहते थे भगवान की कृपा इनके ऊपर है, कभी कभी सोचते थे कि ये खुद भगवान है, कभी कभी सोचते थे कि साधारण बालक है। इस प्रकार से ब्रजवासी गण योग माया के प्रभाव में मस्त रहते थे। उनको केवल इतना मालूम था कि कृष्ण बलराम से हम बहुत प्रेम करते हैं और यही प्रेम उनको जीवित रखता था। और आगे आगे चल के ऐसे कई लीलाएं किए। और उधर कंस को पता चला कि कृष्ण और बलराम अभी तक जीवित हैं। और किसने बताया उनको कि कृष्ण बलराम जीवित हैं? कंस को कैसे पता चला? नारद मुनि। नारद मुनि सब जगह जाते हैं, इधर की बात उधर की बात इधर करते हैं कृष्ण लीला में। तो क्यों करते हैं ऐसे? कृष्ण लीला की मिठास को बढ़ाने के लिए। जब देवकी के पहले पुत्र की हत्या हुई थी और जब कंस ने माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया, नहीं अभी हमें वध नहीं करना है, उनका मृत्यु नहीं, हत्या नहीं करनी है, तो नारद मुनि जल्दी जाके उनसे कहने लगे, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि जल्दी से जल्दी छह पुत्रों की हत्या हो ताकि आठवें पुत्र कृष्ण जल्दी जल्दी से आ जाए, कृष्ण का आगमन जल्दी हो जाए। अगर पुत्रों की हत्या नहीं होगी तो कृष्ण भगवान आठवें नंबर के आएंगे कैसे? तो उसी प्रकार से जब भी वो देखते थे कि शायद कृष्ण की लीला में कोई रुकावट आ रही है, कृष्ण के आगमन में कोई देरी हो सकती है ऐसी घटना होने से, तो उस चीज को हटाने के लिए, उस रुकावट को हटाने के लिए नारद मुनि जाके कुछ वहां गड़बड़ कर देते थे। तो उन्होंने जाके कंस को बताया, अरे आप तो नहीं जानते हैं, आप सोचते हैं कि आपको आपका वध करने वाला व्यक्ति अभी नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते कि वसुदेव ने आपको धोखा दिया है। वसुदेव का जो आठवें संतान है वो पुत्री नहीं है, कन्या नहीं है, वो बालक है कृष्ण। लेकिन वसुदेव ने अंधेरे में ही रात को बीच रात में कृष्ण को यमुना पार करके नंद महाराज के घर में गोकुल में छोड़ा है और उनकी कन्या को ले आए। अब उनकी कन्या चली गई स्वर्गलोक, दुर्गा देवी है वो, और वहां पर बलराम जी के उनके साथ पुत्र दोनों हैं, नंद महाराज के संरक्षण में बैठे हैं वो, और आपको नहीं मालूम, और दे दोनों आपके मृत्यु के लिए इच्छुक हैं। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, अरे ये वसुदेव ने ऐसे मेरे साथ में विश्वासघात किया, तो तलवार निकाली वसुदेव की हत्या करने के लिए। तो नारद जी तो कृष्ण लीला के लिए ज्यादा उत्सुक थे, ऐसा नहीं कि भक्तों की हत्या हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वसुदेव को तो आपकी मृत्यु का कारण नहीं होगा, वसुदेव का आठवां पुत्र कृष्ण होगा, तो वसुदेव को मत मारो। लेकिन कंस ने अपने क्रोध को तृप्त करने के लिए वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। असुर प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं, जेल से निकालते हैं, ऐसे डालते हैं जेल में निकालते हैं। ऐसे कितनी बार किया वसुदेव देवकी को, जब चाह जेल में डाला, जब चाह फिर जब हृदय थोड़ा नरम हो गया तो बाहर निकाला, ऐसे कंस करते रहे। तो वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और उन्होंने केशी को बुलाया, केशी नाम के असुर थे उनके मित्र, कि जाके तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम एक दोनों भाइयों को ढूंढ निकालो और उनका वध करना है। और साथ साथ वो चाणूर मुष्टिक इत्यादि ऐसे पहलवानों को बुलाकर तैयारी कर रहे थे कि मैं कृष्ण और बलराम को बुलाने की तैयारी कर रहा हूं, तुम यहां धनुर्यज्ञ, यहां एक अनुष्ठान होगा और जिसमें कुश्ती का भी एक प्रदर्शन होगा, कृष्ण बलराम जब यहां आएंगे तो उनको खत्म कर डालना है। साथ साथ उन्होंने अक्रूर को भी बुलाया, अक्रूर भी यदुकुल के ही थे, शफल का नाम के यदु के वो पुत्र थे, कृष्ण के चाचा लगते थे। तो अक्रूर वास्तव में कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं, लेकिन कंस इस बात को नहीं जानते थे। तो कंस ने बुलाया अक्रूर को और कहा कि आप तो मेरे शुभचिंतक हो और आप तो भोज वंश और यदु वंश के सितारे हो, आपकी वजह से तो सब शोभा बढ़ती है भोज वंश की, यदु वंश की, तो मैं चाहता हूं कि आपके शरण में मैं आ जाऊं। आप ये कृष्ण बलराम नाम के दो बालक है, वृंदावन में हमने सुना है, किसी न किसी प्रकार से मीठे शब्दों से उनको यहां ले आओ, और मैंने ऐसी योजना बनाई है कि मथुरा में आते ही कुवलपीड नाम का जो पागल हाथी है उसको दरवाजे में रखेंगे ताकि उसके पैरों के तले इनको कुचला देंगे, और अगर कुवलपीड से बच गए तो आगे चाणूर मुष्टिक इत्यादि इन पहलवानों की सेना है, उनसे कुश्ती करा के इनको खत्म कर देंगे, ये मेरी योजना है। और इस प्रकार से मेरे ससुर जो है जरासंध और मेरे मित्र त्रिविद और अन्य भी जो मेरे सारे मित्र हैं उनके संग में मैं राज करूंगा सारे पृथ्वी के ऊपर। इस प्रकार से अक्रूर चले गए वृंदावन, और वृंदावन में जाकर ये भी एक कहानी अपने आप में है, किस प्रकार से अक्रूर गए वृंदावन और वहां जाकर भी कैसे उन्होंने उनका स्वागत हुआ और कैसे उन्होंने अपना प्रस्ताव सामने रखा और कैसे गोपियां फिर अक्रूर को रोकने लगी। जब अक्रूर ने प्रस्ताव रखा कि कंस आपको देखना चाहता है स्पर्धा के लिए, कृष्ण भगवान और बलराम जी हंसने लगे। वैसे भी उनकी लीला वृंदावन लीला समाप्त होने का समय हो गया था, मथुरा लीला की शुरुआत का समय हो गया था, तो अक्रूर एक निमित्त थे। कंस की जो कुश्ती की प्रदर्शनी थी वो भी एक निमित्त था। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान और बलराम जी अक्रूर के रथ में बैठे और जान ही वाले थे कि सारे गोपी वहां आए। ये भी और कभी इसका वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि कैसे गोपी सोच रहे थे कि अभी कृष्ण बलराम चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और रथ के सामने आकर खड़े हो गए, रोकने लगे। किसी न किसी प्रकार से कृष्ण बलराम ने अक्रूर ने उनको मनाया और अलग कर दिया, फिर वो गए। और जैसे अक्रूर का रथ जो है चले जा रहा था तो बीच रास्ते में यमुना के तट पर आए। यमुना के तट पर उन्होंने सोचा कि थोड़ी बहुत स्नान वान कर लिया जाए। यमुना में स्नान करना पवित्र है, यमुना जी का जल भी आध्यात्मिक जल है, कोई साधारण जल नहीं है, भौतिक जल नहीं होता। तो पहले अक्रूर उतरे और दोनों कृष्ण बलराम भी उतरे। कृष्ण बलराम ने जाके अच्छी तरह से स्नान कर लिया और वो आ गए और फिर अक्रूर उनकी अनुमति लेकर स्नान करने गए। जल पिया, स्नान किया। स्नान करते करते जैसे प्रथा है कि जब हम कोई नदी में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो पानी में कमर तक खड़े रहकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से अक्रूर भी यमुना जी के जल में खड़े होकर अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और अचानक उन्होंने कृष्ण बलराम को वहां देखा। तो उन्होंने सोचा, अरे अभी अभी तो कृष्ण बल और बलराम रथ पे आए थे, अभी यहां कैसे आ गए। तो दौड़ते हुए वापस रथ में गए, देखा तो कृष्ण बलराम दोनों वहां है। तो देखा कि अरे वहां पानी में है, यहां भी है। जैसे आपको याद है ब्रह्मा जी को हुआ था, ग्वाल बाल और गाय के बच्चे इधर भी है उधर भी है, तो अक्रूर के साथ में भी ऐसा हुआ। तो जल्दी से वापस दौड़ के गए नदी में, और नदी में जब वो गए तो अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा कि कृष्ण बलराम तो हैं, लेकिन किस रूप में है। वहां देख रहे हैं कि बलराम जी ने अनंत शेष का रूप धारण किया है। अनंत शेष मतलब नाग रूप धारण किया है और एक सुंदर अपने शरीर से शैया बनाया हुआ है, गोल गोल आकार बन के ऐसी शैया बनाई है और उनके फण नील रंग के हैं और उनके गले बिल्कुल हिम की तरह सफेद, दूध की तरह सफेद, बहुत सुंदर लग रहे थे अनंत शेष। और उनके ऊपर विश्राम कर रहे थे कृष्ण भगवान, लेकिन महाविष्णु के रूप में, चतुर्भुज में। और इतना ही नहीं, उनके संग में सारे बड़े बड़े देवी देवता भी उपस्थित थे, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे और ऊपर के लोकों के निवासी थे, सिद्ध लोक के, चारण लोक के, विद्याधर लोक के, गंधर्व लोक के, सब प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, अपनी स्तुतियां अर्पण कर रहे थे। यहां तक कि चार कुमार भी थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, नव योगेंद्र थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षिगण सब थे, प्रहलाद भी थे, और सब अपने अपने जगह इर्द गिर्द उनके खड़े होकर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं और इसको देखते रह गए अक्रूर। और इस प्रकार से वो समझ में आया, उनको पूरा ज्ञान हुआ कि यही कृष्ण जो है, बाल जो हम साधारण बालक जिसे सब समझ रहे हैं, ये वास्तव में महाविष्णु के भी स्रोत हैं और बलराम ये अनंत शेष के स्रोत हैं। फिर उन्होंने अक्रूर ने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। वास्तव में प्रार्थना वंदना के पथ में परिपूर्णता प्राप्त की अक्रूर ने। जिस प्रकार से सुखदेव महाराज ने कीर्तन करके अपने जीवन को सफल बनाया, परीक्षित महाराज ने श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाया, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके अपने जीवन को सफल बनाया, और जिस प्रकार से बलि महाराज ने आत्मनिवेदन करके अपने जीवन को सफल बनाया, जिस प्रकार से और हनुमान ने सेवा करके अपना जीवन सफल बनाया, और अर्जुन ने सख्य भगवान के सख्य रस में सेवा करके अपना जीवन सफल बनाया, पृथु महाराज ने अर्चना करके अपना जीवन सफल बनाया, उसी प्रकार से अक्रूर ने सुंदर सुंदर वंदनाओं, वंदना करके, प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को अर्पण करके अपना जीवन सफल बनाया। नवदा भक्ति का कोई एक भी मार्ग हम स्वीकार करें और उसमें परिपूर्णता अगर प्राप्त कर लें तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो अक्रूर ने ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की और कृष्ण और बलराम के इस स्वरूप को देखकर फिर लौटकर चले गए। बड़े ऐसे वापस गए तो उनके चेहरे से कृष्ण बलराम को पता चल गया होगा कि ये कुछ साधारण दृश्य देखकर नहीं आए हैं। तो कृष्ण भगवान उनके मजाक उनसे मजाक करने लगे कि क्या चाचा जी, आप वहां कुछ कहीं आपने वहां जल में या आकाश में कोई अद्भुत दृश्य तो नहीं देखा। तो अक्रूर कहने लगे, जब मेरे आंखों के सामने आप खड़े हैं और आपका सुंदर रूप का मैं दर्शन कर रहा हूं, तो और इससे दूसरा कौन सा सुंदर अद्भुत दृश्य हो सकता है। आपका रूप देखने से ही सब सारी वांछाएं पूरी हो जाती है, हृदय संतुष्ट हो जाता है। इससे अद्भुत, इससे सुंदर और क्या चीज है। तो इस प्रकार से फिर अक्रूर संतुष्ट हुए, भगवान ने उनको दर्शन दिया दोनों महाविष्णु और अनंत शेष के रूप में, और इस प्रकार से फिर वो मथुरा की ओर आगे चले। और फिर आगे चल के आप जानते हैं कि कुश्ती के आंगन में किस प्रकार से बलराम जी ने फिर आगे चल के मुष्टिक को मुक्का प्रहार करके उनको खत्म कर दिया, और फिर जो अलग कुश्ती पहलवान आए उनका भी वध कर दिया, और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम विजयी हुए। कृष्ण ने आखिर में कंस का वध कर दिया, और उसके बाद में 28 साल की उम्र तक कृष्ण और बलराम वहां रहे मथुरा में, और फिर मथुरा से आगे चल के वो द्वारका में गए। तो मथुरा में क्या क्या लीलाएं हुई वो कल देखेंगे, और द्वारका में भी क्या हुआ वो हम कल ही देखेंगे दोपहर को, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।